सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोर से बोलिए पहले एक दफा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इसके अलावा और कहीं भी तरीका नहीं है, कोई गति नहीं है। तो कोई भी काम शुरू करना है और पूर्ण भी करना है तो इसी से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाते परतरो अपाय, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है।
जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडर चार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरी स्टूडियो संबल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरी स्टूडियो संबल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साद्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णापादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य सब बोलिए प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़ के बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। आज हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक संख्या 8 के लिए कहा है 8। रसोहम सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणभा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम ऋषु। पीछे बोलेंगे, संधि छेद करके बोलता हूं, फिर बोलेंगे सारे, है ना? बोलिए रसहा अहम अप्सु कौन्तेया प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रण्वा सर्व वेदेषु शब्दा खे पौरुषां निशु। अभी जिसको ये भी पढ़ना आता है उसका भी पढ़ना हो गया इसमें, है ना? सबको संस्कृत नहीं आती ना, तो संधि छेद से बोलेंगे तो सब पढ़ लेंगे।
क्योंकि ये भगवान के वचन हैं, भगवान के मुख से निकले हुए हैं, तो ये सबको बोलना चाहिए। तो अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उसको छंदीच्छेद करके बोल दिया है। तो उतना ही फल मिलने वाला है जितना कि पूरा श्लोक हम बोलेंगे, है ना। ये दफा और मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। रसो हम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवहा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषु। रसो हम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषु। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराएंगे। रस स्वाद, अहम मैं, अप्सु जल में, कौन्ते हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूं, शशि सूर्यो चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणवा ओंकार के, आउम आउम मामले ओम, तीन अक्षर, सर्व समस्त, वेदेशु वेदों में, शब्द शब्द या ध्वनि, हे आकाश में, पौरुषम शक्ति या सामर्थ्य, नशु मनुष्यों में। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, आप सुनिए, मैं पढ़ूंगा पहले। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि क्या आपने भगवान देखा है या हमें भगवान दिखा दीजिए, ऐसे किस्म के क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो एक दफा रामलीला ग्राउंड में जहां हमारा फंक्शन चल रहा था, एक हफ्ते का फंक्शन था दिल्ली गेट के पास, रामलीला ग्राउंड जो है दिल्ली में, तो उस समय किसी ने क्वेश्चन किया प्रभुपाद जी से कि क्या आपने भगवान को देखा है, कृष्ण को देखा है। तो प्रभुपाद जी ने गर्दन ऐसे नीचे करके बोलते हैं, क्या ऐसे ही पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है? तो एक ये भी उत्तर है। और वैसे जो लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले उनको ये बोलना चाहिए कि क्या आपने क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है भगवान को देखने की। भगवान को देखने के लिए एक योग्यता चाहिए। कोई भी आदमी आरा गहरा नथु खहरा जो है भगवान को जाकर के नहीं देख सकता ऐसे ही, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ही मिलना है तो वहां पर भी कोई ऐसे भी आदमी जा सकता है। तो भगवान से कोई ऐसे मिल जाएगा कोई, उसके लिए पहले योग्यता प्राप्त करनी होती है, तब जाकर के। कई लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं भगवान के बारे में, भगवान कैसा है, भगवान है कि है भी नहीं है, कि निराकार है भगवान, साकार है ना, ऐसे बहुत सारी बातें कहते हैं लोग। और बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं भगवान के बारे में, फिर अपने अपने कमेंट्स देते हैं, बड़े बड़े भाष्य भी लिखते हैं, भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। तो ये जो ज्ञान है ये पूर्ण नहीं है। ये जो मनुष्य है वो तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, अवगुण हैं इसमें बहुत सारे, मुख्य हैं इसमें। तो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? कोई सारी उम्र भी क्या, कई जन्म भी लगा रहे ऐसे रिसर्च करने में भगवान के बारे में, तो नहीं पता लगा सकता है। उसके लिए तरीका है, भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में भगवद गीता में, तो वहां से क्यों नहीं लेते हैं? जिस मनुष्य के बारे में हम जानना चाहते हैं अगर वो खुद ही अपने आप बता देता है मेरा जन्म वहां हुआ, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं ये कार्य करता हूं, वो ऑथेंटिक है या अपनी तरफ से ही आप ढूंढते रहेंगे उसके बारे में तो नहीं पता चलेगा। सो भगवान स्वयं बताते हैं मैं कैसा हूं, मेरा रूप कैसा है, मेरा जन्म कैसा है, मैं क्या काम करता हूं, ये सब बताते हैं तो ये ऑथेंटिक है, हमें उसको मान लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे खामखा बिना मतलब के ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है हमने फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर में, तो वहां लिफ्ट भी लगी हुई है और सीढ़ियां भी है, तो जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या करेगा, एकदम लिफ्ट से चढ़ जाएगा ऊपर दो सेकंड में ऊपर, तो वो बुद्धिमत्ता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे मानव समाज में ये ज्ञान देने की कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है यहां पर भगवान के बारे में बताया जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। बाकी कामों में तो बहुत ट्रेनिंग चल रही है, कैसे खाना है, कैसे बच्चे पैदा करने हैं, कैसे अपना प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा करनी है, कैसे इस किस्म की बातों के लिए बड़ी ट्रेनिंग है और खूब मेहनत भी करते हैं लोग इसके लिए, खाने पीने सोने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस भवसागर से निकलने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, जबकि खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने ये करना ये तो कुत्ते बिल्लियां भी जानती हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो काफी समय से जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते तब भी ये गवर्नमेंट एक विचार कर रही थी कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दिया जाए, ये तो कुत्ते बिल्लियों को अपने आप ही पता चल जाता है क्या करना है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है, तो ये मनुष्यों को थोड़ी जरूरत है इसकी। लेकिन यही काम चल रहा है, यही बिजनेस है लोगों का आजकल, खाओ पियो सो मजे करो बस पैसा कमाओ। जो असली व्यवसाय है हमारा, असली कार्य है भगवान को जानना, भगवान क्या है, हम कौन है, हम यहां पर क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, इसका कोई इलाज है कि नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे मन में आनी चाहिए। इसको बोलते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर ये इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में नहीं उठते हैं तो हम कुत्ते बिल्लियों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। खाना तो कुत्ते बिल्लियां भी करती हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करती हैं अपने नाखूनों से पंखों से, और हम लोग एटम बम बना लेते हैं, AK-47 बना लेते हैं और कई चीजें बना लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। अभी मनुष्य जीवन मिला है हमें 84 लाख जूनियों में के बाद, ये मानव जीवन जो है केवल खाने पीने सोने के लिए ऐश करने के लिए नहीं मिला है। हजारों सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक तो कभी हम जलचर बने रहे, कभी कीड़े पतंगे बनते रहे, कभी रेंगने वाले सांप सूंप बिच्छू वगैरह ये बने रहे, कभी जंगली जानवर बने रहे, और कभी अनकल्चर अनसिविलाइज जो लोग हैं वो भी मनुष्य ने 4 लाख किस्म की योनि है मनुष्यों की, उनमें से बहुत सारे तो अनकल्चर्ड हैं, असभ्य, तो उसको क्या कहेंगे, नाम के मनुष्य हैं वो लोग भी, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और उनमें से भी कुछ लोग जिसमें हम भी आते हैं, आप लोग तो कल्चर्ड हैं क्योंकि भगवत गीता सुन रहे हैं, मंदिर में आते हैं, तो आपको तो सिविलाइज कहा जाएगा ना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी, मध्य प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, और J&K में भी, ऊपर पहाड़ों में, हिमाचल में भी बहुत से सब लोग मिलेंगे, पता ही नहीं है, खाने पीने सोने का भी पता नहीं है उनको, तो भगवान के बारे में तो क्या पता उनको। तो 4 लाख किस्म की योनियां, उनमें भी असभ्य लोग हैं बहुत, इनको कुछ पता ही नहीं है, और उनमें से थोड़े से लोग मनुष्य जो हैं उनको थोड़ा सा सभ्य कह सकते हैं हम, उन सभ्य में भी भगवान के बारे में सबको पता नहीं है। मनुष्य नाम शास्त्र से हजारों करोड़ों में से कोई एक आदमी जो कल्चर भी है ना, वो भी भगवान के बारे में जानने की कोशिश, जबकि हमारा मुख्य कार्य, मुख्य जो व्यवसाय है यही होना चाहिए कि भगवान के बारे में जानना, मैं क्या हूं, मैं इस भवसागर में क्यों दुख उठा रहा हूं, यहां से कोई निकलने का तरीका है कि नहीं है कोई। जिसके मन में ऐसे विचार आते हैं वो असल में सिविलाइज्ड है, बुद्धिमान व्यक्ति है वो, और बाकी बाकी को आप बुद्धिमान नहीं कह सकते, चाहे वो बहुत बड़ा स्कॉलर हो, PhD हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको आप भौतिक तरीके से कह सकते हैं, ये भौतिक बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन असल में देखा जाए जो शास्त्र कहते हैं वह भक्ति बुद्धिमान बिल्कुल नहीं है। ये प्रश्न उठने चाहिए यहां पर, और भगवान तो यहां पर अपने आप ही बता रहे हैं, भगवद गीता में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद बताते हैं। भगवान से सुनिए, और प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में इसी का प्रचार करने के लिए, भगवान कौन है, हम कौन है, हमें इस भव सागर से कैसे पार करना है, बड़े बड़े सेंटर मंदिर खोले हुए हैं जहां इस्कॉन के भक्त सिखाते हैं, या कभी कभी मोहल्ले मोहल्ले घर घर भी जाते हैं ये बताने के लिए, भगवत गीता देने के लिए। जागो उत्तिष्ठा, जागो, सो मत रहो, कब तक सोए रहोगे, माया के चुंगल में कब तक पड़े रहोगे, निकलिए। तो जो भक्त लोग बताते हैं, कृष्ण भक्त बताते हैं, उनकी बात अगर सुन लेते हैं हम, वो वैसे ही है जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है। भगवान से सुना और भक्तों के मुख से सुनना एक ही बात। सो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पका पकाया है, पका पकाया है, सिर्फ हमने खाना है। क्या मुश्किल है भगवान को जानना, कोई मुश्किल नहीं है, भगवान बता रहे हैं यहां पर। जब हम पानी पीते हैं, बड़ी प्यास लगी हुई हो, अगर समुद्र का पानी पिएंगे तो दिल नहीं करेगा पीने को, प्यास भी नहीं बुझेगी हमारी, लेकिन अगर ठंडा मीठा पानी मिल जाता है तो पूरी आत्मा शरीर पूरा संतुष्ट हो जाता है। तो वो संतुष्टि जो है, जल का जो स्वाद है, कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। क्या मुश्किल है इसमें, क्या कठिनाई, बच्चा भी जान सकता है इसमें। फिर पूछते हैं कहां भगवान, कहां भगवान, वहां दिखाओ हमें भगवान। ये भगवान तो नजर आ गए, बड़े जोर की भूख लगी हो ना कभी, बड़ी भूख, मैं 50 रोटी खा जाऊंगा इतनी भूख लगी हुई है, तो जब हमारे सामने रोटी आ जाती है और एक टुकड़ा काट करके उसका मुंह में डालते हैं ना, तो एकदम हमारी भूख जो है बिल्कुल शांत हो जाती है। अभी खाना खाया भी नहीं, अभी गले में ही है एक टुकड़ा, भूख शांत, देखा नहीं आपने सामने, प्रैक्टिकल देखा होगा ये। तो वो क्या चीज है वो, जो शुद्ध हमारी मिट रही है, कृष्ण है वो। इसे हम कह सकते हैं, कोई लोग हैं इसका मतलब है भगवान तो फिर निराकार हुआ ना, कुछ लोग फिर ये कह सकते हैं कि भगवान तो आकार तो आ ही रहा नजर, निराकार भगवान नहीं। वैसे देखा जाए तो भगवान आकार भी है, निराकार भी है, अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। हमें साक्षात नजर नहीं आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं भगवान निराकार है, लेकिन भगवान का असल में रूप है। पहले तो हमें ये जानना होगा भगवान है कौन है, तो इसके लिए भी हमें ज्यादा स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही बता रहे हैं अपने आप, और भगवान के भक्त बताते हैं। भगवत गीता में देखिए ना, जगह जगह लिखा है भगवान उवाच, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, हर एक पन्ने में लिखा हुआ है भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भगवान के शब्द हैं ये। और ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि भगवान कौन है, कृष्ण है। और जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवान के बारे में नहीं जान सकता, भगवान को जानने के लिए भगवान का भक्त बनना बहुत जरूरी है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, बड़े बड़े वेद किताबें, वेद मतलब ज्ञान, बड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वेद पुराण सब पढ़ लिए, उससे आपकी विद्वता तो बढ़ सकती है, ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन भगवान को जानने का ये गुण नहीं है। भगवान को जानने का एकमात्र गुण है क्या, भक्ति, भक्त्या माम भी जान आती, भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, कृष्ण को जान सकते हैं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, भगवान कौन है, वैसे तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं, भगवान तो ईश्वर है ही है, कृष्ण ईश्वर है, लेकिन हम कह सकते हैं, जब मायावादी लोग कहते हैं हम भी ईश्वर हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ईश्वर हैं, हां हम मान सकते हैं उनकी बात को, ठीक है आप ईश्वर हो, भगवान के अंश हैं, ईश्वर हैं, सोने का अंश है, सोना ही होता है, लेकिन भगवान जो कृष्ण है वो कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परमेश्वर। ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं ना हम लोग, तो ऑफिस में एक क्लर्क के बहुत सारे क्लर्क होते हैं, 100, 200, 400, 500, उनके ऊपर एक दस बीस के ऊपर एक एक हेड क्लर्क भी होता है, मंत्री होते हैं, मंत्रियों के ऊपर एक हेड मंत्री होता है। इसी प्रकार ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, आप सब ईश्वर हैं, लेकिन आपके ऊपर एक हेड है, प्रभुपाद जिसको कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परमेश्वर। तो वो परमेश्वर कौन है? ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है कृष्ण जो है, सारे कारणों के कारण है। और यहां पर एक अंतर और मिल गया, हम ईश्वरों में और भगवान जो परमेश्वर है उनमें क्या अंतर है? सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, लेकिन हम सच्चित आनंद नहीं है, हमारा शरीर तो क्या है? निरानंद। भगवान का जो शरीर है वो इटर्नल है, सनातन है, हमारा जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, 10 20 100 साल के लिए है। आनंद हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया में आनंद है ही नहीं, सच्चित आनंद तो केवल भगवान है। अगर आपको आनंद चाहिए तो आप कृष्ण की शरण में आए, तब आपको आनंद मिल सकता है। इस भौतिक जगत में कहीं भी आनंद नहीं है, चाहे कोई गरीब बन जाए, कोई अमीर बन जाए, कोई टाटा बिरला का भी बाप बन जाए, आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि आनंद तो है कृष्ण है, कृष्ण का एक नाम आनंद है। कृष्ण को छोड़ करके अगर हम आनंद लेना चाहते हैं इस भौतिक जगत में तो आनंद नहीं मिल सकता। ये सब बातें भगवान स्वयं बता रहे हैं यहां पर। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं भगवान की बात को नहीं मानते, तो भगवान ऐसे लोगों को कहते हैं मूढ़ा, नराधमा, बड़ी गाली देते हैं भगवान इनको लोगों को। क्योंकि कभी कभी जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें गुस्सा आता है ना, हम डांटते हैं उनको। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, जब भगवान की बात को नहीं मानते तो पहले ही दंड भुगत रहे हैं। विकुंठ लोग से हम यहां पर इस संसार में आए हुए हैं दंड भुगतने के लिए, वो तो दुख उठा रहे हैं। दुख उठाने के बावजूद भी भगवान हमें सुखी करना चाहते हैं, हम भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी रहे, इसलिए वो खुद बताते हैं अपने आप के बारे में, मेरे प्यारे बच्चों मेरे बारे में जान जाओ। और जो भगवान के बारे में जान लेता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसके द्वारा तो पुनर्जन्म नहीं होता है संसार में। पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरेशनम, ये बार बार पैदा नहीं होना पड़ता। संसार का मतलब यह बार बार पैदा होना, बार बार मरना, जैसे शुरू में बताया 84 लाख जोनियां, उसमें द्वारा से नहीं आना पड़ता अगर भगवान के बारे में जान जाते हैं। और भगवान स्वयं बताते हैं, और हरे कृष्णा वाले भी जगह जगह जाकर के बता रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। तो हमें इस बात को बड़ी आसानी से मान लेना चाहिए, तब हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ये श्लोक, अभी कुछ लोग सो रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, जिसको जानने के बाद दोबारा से इस जेल में नहीं आना पड़ेगा, ये भाव रोग नहीं लगे। ये जो हम दुख उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये चार प्रकार के जो दुख हैं, इसे छुटकारा मिलने वाला है ये बातें सुन करके। लेकिन उसके बाद भी सोए हुए कुछ लोग मैं दिख रहा हूं, कुछ सोए हुए हैं, तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है? भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान खुद बता रहे हैं, और यहां तो नींद आ रही है, जिसका मतलब है हम सीरियस नहीं है। नारद जी एक दफा, एक इंद्र जो थे ना सुअर बन गए सुअर, तो नारद जो भक्त है वो तो पर दुख दुखी, कोई आदमी दुखी है तो उसके लिए वो भी दुखी होते हैं। साधु को भक्त को अपने लिए दुख कभी नहीं होता, उसको वो तो भक्ति कर रहा है, उसको पता है कि मैं तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, फिर क्यों दुखी है वो? प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं बाकी लोगों के लिए दुखी हूं, अपने लिए दुखी नहीं हूं। तो नारद जी कहते हैं कि भाई आप तो इंद्र हो, आप स्वर्ग लोक के राजा हो, चलो वापस। दुर्योधन नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, वहां पर ये दबड़ा मिलेगा, ये गंदमंद खाने को मिलेगा, तो स्वर्ग में तो ऐसा नहीं मिलता भी, नहीं मैं नहीं जाता। तो जो जाना नहीं चाहे तो उसको आदमी क्या कर सकता है, भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रेम जब तक नहीं करेंगे तो ये हमारा काम नहीं बनने वाला। इसलिए प्रभुपाद ने क्या प्रेमामय भक्ति लविंग डिवोशनल सर्विस नाम दिया है। और जहां हम सो रहे हैं एक बहुत पुराना भजन है, वो उठ जाग मुसाफर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, ये प्रीत करण की रीत नहीं वो जागत है तुम सोवत हो। ये प्यार करने की रीत है, वो तो जाग रहा है और तुम सो रहे हो, तो सोना नहीं है ना, सोना नहीं। दोबारा से ये मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। तुम्हें तात्पर्य सुनिए बड़े ध्यान से। ये श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान सारे कारणों के कारण भी हैं और सब जगह प्रेजेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट। अपनी पराशक्ति और अपराशक्ति, पराशक्ति में ये जीव लोग हैं, हम लोग जो हैं जीव, ये पराशक्ति में आते हैं, और अपरा प्रकृति शक्ति। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। डायरेक्ट तो भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं, जैसे बताया कि जल का स्वाद में हूं, सूर्य और अग्नि का प्रकाश में हूं, तो ये उनकी शक्तियों द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं भगवान को। और इस प्रकार निराकार रूप से अनुभव होता है, जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, यहां पर निराकार एकार की बात आई। अभी सूर्य भगवान तो हमें नजर नहीं आ रहा, उनका प्रकाश नजर आ रहा है, तो कोई बोले कि भाई सूर्य जो निराकार है, तो निराकार तो नहीं है, क्योंकि हम सूर्य लोक में गए नहीं, इसलिए हमें केवल प्रकाश नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। सूर्य देव जो है साकार भी है, निराकार भी है। जिस प्रकार सूर्य देव एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। हालांकि भगवान तो गोलोक धाम में है, लेकिन उनकी शक्तियां सब जगह कार्य कर रही हैं, तो उससे हम अनुभव लगा सकते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल पीना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। अगर उसमें स्वाद ना हो जल में, तो कौन जल पीने जाएगा? तो जो जल है वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे हम भगवान को देख सकते हैं। और वैसे जब आप धीरे धीरे इस से आगे बढ़ेंगे भक्ति करते करते, तो भगवान को साक्षात भी देख सकते हैं। उसके लिए प्रेम चाहिए। प्रेमान्यन छुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु बलोके अंति। जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो जिन्होंने खूब भगवान की भक्ति की गई है, तो वो हमेशा भगवान के रूप को देखते हैं। आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है भगवान के रूप के बारे में, लेकिन भक्त लोग जो हैं वो संता सदैव हृदयेषु बलोके अंति अपने हृदय में राधा कृष्ण की विग्रह को देखते हैं। लेकिन हम लोग अभी शुरुआत है हमारी, तो हम किस प्रकार देख सकते हैं भगवान को? पानी पी करके, रोटी खा करके, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश देख करके अंदाजा लगा सकते हैं भगवान का, अनुभव कर सकते हैं भगवान को। समझ रहे नहीं? जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सुगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादी जल प्रदान करते हैं। जो मायावादी लोग हैं, निराकारी, वो तो स्वाद दे करके अनुभव करते हैं, और जो सुगुणवादी हैं, सगुणवादी, वो बोलते हो भगवान कितनी अच्छी, देखो हमारे लिए कितना शुद्ध पानी और स्वादिष्ट पानी, मीठा पानी हमें प्रदान किया है। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है और कोई विधि नहीं। व्यवहार्यता सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। वैसे देखा जाए तो कोई मतभेद तो है ही नहीं। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है। कोई वस्तु देखें तो निर्गुण भी होती है और सगुण भी होती है और इनमें कोई विरोध भी नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से ही निकलता है। अभी देखिए कोटि कोटि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों के ऊपर भी ये भौतिक ब्रह्मांड है, इनके ऊपर भगवान का धाम है जिसको वैकुंठ लोक बोलते हैं और वैकुंठ से ही ऊपर गोलोक धाम है। वैकुंठ लोक भी बहुत है, अनंत है। भौतिक जो लोक हैं हम उनकी गणना नहीं कर सकते, इतने ज्यादा है कि एक थैले में तिल डाल दिए जाए ना तो उसकी गिनती नहीं होती। ऐसे ये भौतिक लोग हैं, ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड नहीं बोलते ना, लेकिन ये बहुत थोड़े हैं। देखा जाए तो बहुत थोड़े हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली है ना, तो दिल्ली में तिहाड़ जेल तो छोटी सी है, तिहाड़ जेल के बाद तो पूरी दुनिया है। उसी प्रकार जो असली दुनिया है वो है वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, सकेत धाम। और ये जो भौतिक संसार है ये जेले हैं, छोटी छोटी जगह हैं, छोटी छोटी जगह हैं, जेले हैं, ये सारा संसार नहीं है। समझिए इस बात को। तो गोलोक धाम में से भगवान के शरीर में से किरणें निकलती है जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। उन ब्रह्म ज्योतियों के बीच में ही ये वैकुंठ लोक बसे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश भी उसी की रिफ्लेक्शन है, उसी से आता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के अंदर ये भौतिक लोक हैं बहुत सारे, वो जो प्रकाश यहां पर हमारे पास आ रहा है वो भी सूर्य की रिफ्लेक्शन है, सूर्य का प्रकाश है। बिल्कुल वैसा ही ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर में से निकलती है, उसमें वैकुंठ लोक है। प्रण या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है, साउंड इनकार्नेशन। ओम जो है, ओम ओम शब्द जो है, आ ओ मा ओम, ये भगवान का को रिप्रेजेंट करता है, ये भगवान की नुमाइंदगी करता है। ओम साउंड इनकार, आवाज का अवतार। जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो ओम से शुरू होते हैं, ओम भूर्भुवः, ओम नमो भगवते वासु, इसको बोलते हैं प्रणव, प्रणव ओंकार, प्रणव ओम। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। भगवान को संबोधन करने के लिए ओंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे सिख भाई भी इसका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं एक ओंकार, बोलते हैं ना सेम। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पकारने से भयभीत रहते हैं, वो भगवान के बहुत सारे नाम नहीं पुकारते, इसलिए वो केवल ओम शब्द से ही गुजारा चला लेते हैं। लेकिन जो संत हैं, महात्मा हैं, वैष्णव हैं, वो जानते हैं कि भगवान के तो असंख्य नाम हैं। महाभारत में तो शास्त्र नाम दिए गए हैं ना, लेकिन शास्त्र नाम नहीं, भगवान के तो कोटि कोटि नाम है। जो भी भगवान लीला करते हैं उनके नाम पड़ जाते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी, मुरली हाथ में लेते हैं तो मुरलीधर है ना, यशोदा के पुत्र हैं तो यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन। भगवान के असंख्य नाम है, कोई भी नाम से आप पुकारिए भगवान खुश होते हैं। वैसे देखिए इसमें भी एक सीक्रेट बता दूं आपको मैं, भगवान को अगर आप कृष्ण बोलते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न होते हैं लेकिन इतने प्रसन्न नहीं। लेकिन यदि आप उसको नंद नंदन बोल देंगे ना, यशोदा नंदन बोलेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये नेचुरल है, बट नेचुरल हमारे में भी ये है ना, तो ये नेचुरल है प्रकृति। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। ओंकार जो है कृष्ण का संयंत्रेशन है, शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो बातें बताई अभी शॉर्ट में, अभी तो बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं, जो इस चीज को जानता है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो आदमी धन्य है, धन्य है। आप लोग सब धन्य है, अभी भगवान के बारे में जान रहे हैं और उसको याद रखिए, फिर भूल नहीं जाना है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त हैं, वो इस संसार से, जेल से छूट नहीं सकते। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान। जो कृष्ण के बारे में जानता है, कृष्ण कैसे अवतरित हुए, उनका जन्म कैसे हुआ, वो क्या क्या काम करते हैं, उन्होंने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की, कैसे बछड़े घास चराने जाते थे उनको, कैसे वो जूठे खाना भी खा लेते थे अपने साथियों का, ये सब बातें जो जानता है वो मुक्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मतलब इस संसार से वो मुक्त हो जाए। और जो भगवान के बारे में नहीं जानता है, ना जानने की कोशिश करता है, वो तो ये जीवन जो है हमारा वो व्यर्थ गुवारा है, अपना जीवन, उसका जीवन। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लू। मनुष्य जीवन मिलकर के अगर राधा कृष्ण के बारे में हमने नहीं जाना है तो समझो कि जान बूझ के वो सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो आप लोग बुद्धिमान बनिए, आत्महत्या ना कीजिए, भगवान के बारे में जानने का कोशिश कीजिए। और शुरुआत हमें करनी है किससे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन कीजिए, गुरु केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गुरु का प्रेम धन है, ये इस भौतिक जगत का नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए, भगवत गीता यथारूप पढ़िए, भागवत पढ़िए, ये शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप कृष्ण के बारे में पूर्णतया तो कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन काफी कुछ जो हमारे लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, वो जान जाएंगे। कृष्ण हमें जो ज्ञान चाहिए हमें इस संसार से निकलने के लिए, वो अपने बारे में आपको बता देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 9:07 हो गए हैं, टाइम तो हो गया है, एक दो प्रश्न किसी के हो तो पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के बारे में, ये तो उसके बाद फिर शास्त्र नेत्र जी आ रहे हैं, आपको बताएंगे आगे क्या प्रोग्राम है। हरे कृष्णा, धन्यवाद है। ओम, आप बताया ना, आप सुना नहीं आपने, ओम जो है भगवान का आवाज का अवतार है, साउंड इनकार्नेशन। भगवान के बहुत सारे अवतार है ना, तो कृष्ण को संबोधन करने के लिए ओम शब्द का इस्तेमाल होता है वैदिक ग्रंथों में, साउंड इनकार्नेशन है ये, प्रणव ओम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको भगवान का निराकार रूप कह सकते हैं, लेकिन ये निराकार तो नहीं है, लेकिन निराकार रूप है, क्योंकि हमें भगवान ओम बोलने से भगवान नजर नहीं आ रहे हैं ना हमें। जैसे बताया कि सूर्य है, तो सूर्य तो जो देवता है उसका, वो हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रकाश नजर आ रहा है। तो वैसे ओम के पीछे तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण हमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ओम कृष्ण को संबोधन करने का शब्द है ये, और ये निराकार है, लेकिन ये असल में निराकार नहीं है। दोनों बातें अचिंत्य भेदाभेद बताया ना। हरे कृष्ण।